लू का 22 और 23 अध्याय में, पूरे 22 और 23 अध्याय में जब हम इन बातों को देखते हैं तो लगभग 24 घंटे के अंदर प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने से लेकर, बल्कि 24 घंटे से कम समय रहा, उसके क्रूस पर मृत्यु तक करीब 29 भविष्यवाणी है जो इन 24 घंटों में पूरी हुई हैं, और करीब 18 घटनाएं हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पकड़ाए जाने से लेकर उसके क्रूस पर जाने तक घटी हैं। 18 घटनाएं हैं। 5 ऐसे अवसर हैं जहां प्रभु यीशु मसीह को शासकों अधिकारियों के सामने खड़े होकर एक मुलजिम के रूप में, एक अपराधी के रूप में खड़ा होना पड़ा है और उसका ऊपर दंड अभियोग लगाया जा रहा है। केवल 24 घंटे से कम के समय में। अब सोचिए, एक वो व्यक्ति जिसने इस पृथ्वी पर रहकर सदैव अपने जीवन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा लोगों के लिए भलाई और भलाई और भलाई उत्पन्न करी, वो आज इन थोड़े से समय में इस संघर्ष में जीवन में जा रहा है। इस पर विचार करना बहुत अच्छा है और ये बहुत गंभीर है। मात्र थोड़े समय में इतना अधिक संघर्षपूर्ण जीवन जो शायद हम अपने जीवन के पूरे काल में कभी भी, चाहे हमें मरना भी पड़ जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम उतना सामना नहीं कर सकते। क्यों? क्यों? ये परमेश्वर की योजना, ये परमेश्वर का प्रेम, ये परमेश्वर का त्याग, ये परमेश्वर का बलिदान है। और ये क्रूस की यात्रा, यीशु मसीह की यात्रा, एक आनंद की यात्रा नहीं थी। पाम संडे को हम देखते हैं कि लोग उसको राजा बनाना चाहते हैं। क्यों राजा बनाना थे? उनका स्वार्थ था। जय के नारे लगा रहे थे, जरूर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनके पीछे कहीं ना कहीं वो इसलिए चाहते थे, ये राजा बन जाएगा तो हमें रोमी शासन से छुटकारा मिल जाएगा, हम भी बहुत अच्छी रीति से रहेंगे। उनकी कल्पनाएं, उनके विचार, उनकी सोच, उनकी इच्छाएं, सब कुछ अपने 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 तक सीमित थी। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन के रहस्य को नहीं समझ सके, यहां तक कि उसके शिष्य भी नहीं समझ सके। और शायद वही चीज आज मेरे और आपके जीवन में भी लागू होता है। लेकिन आइए मेरे साथ निकालिए लूका उसका 22 अध्याय, कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, 47 पद से लेकर 53 पद तक। जब वो बात कर ही रहा था, देखो एक भीड़ आ पहुंची और 12 में से एक जो यहूदा कहलाता था उनके आगे आगे चला आ रहा था। वो यीशु के पास आया और उसे चूमे, परंतु यीशु ने उसे कहा, यहूदा, क्या तू मनुष्य के पुत्र को चूम कर धोखे से पकड़वाता है? जो उसके आसपास खड़े थे जब उन्होंने देखा कि क्या होने जा रहा है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? उनमें से किसी एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। परंतु यीशु ने कहा, ठहरो, ऐसा ना करो। उसने उसका कान छूकर अच्छा कर दिया। यीशु जानता है कि उसको लोग पकड़ने के लिए आए हैं। यीशु जानते हैं कि अब उसके बाद क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उसकी प्रेम, उसका दया, उसकी चाहना यह है कि किसी मनुष्य की हानि ना होने पाए। यद्यपि एक शिष्य जो उतावले में आकर उस शिष्य का दूसरा सुसमाचार वर्णन करता है, वो शिष्य पतरस है, उतावले में आकर उसके कान को उड़ा देता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तलवार को रोकते हैं, उसके कान को छूते हैं और उसको चंगाई प्रदान करते हैं। ये परमेश्वर की दया का प्रमाण है। और तब यीशु ने कहा, ठहरो, ऐसा ना करो। उसने उसका कान छूकर अच्छा कर दिया। यीशु ने मुख्य याचकों और मंदिर के अधिकारियों तथा प्राचीनों से जो उसके विरुद्ध उठकर आए थे कहा, क्या तुम तलवार और डंडे लेकर किसी डाकू को पकड़ने आए हो? क्या तुमने मुझे डाकू समझा है जो तुम मुझे ये सब कुछ लेकर पकड़ने आए हो? जब मैं प्रतिदिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहा तो तुमने मुझ पर हाथ नहीं लगाया, परंतु ये घड़ी और ये अंधकार का समय तुम्हारा है। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा को आरंभ किया था तो सेवा को आरंभ करते समय उसने अपने शिष्य का चुनाव किया था, और सुसमाचार में हर सुसमाचार इस बात को वर्णन करता है कि उसने किस प्रकार से 12 शिष्य को चुना। लेकिन जब उसने यहूदा को चुना, यहूदा स्क्रूति को चुना, तो उसके नाम के आगे हमेशा उसके साथ कुछ उपनाम जुड़ गया, कुछ टाइटल जुड़ गया। जब भी यहूदा का नाम आया उसके नाम के आगे उसका कुछ टाइटल या उपनाम जुड़ गया। जब पहले मत्ती में हम देखते हैं, मत्ती उसके 10वें अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह शिष्य को चुनते हैं उसका पूरा वर्णन है, तो वो कहता है कि वो जो यीशु का पकड़वाने वाला था, जिसने यीशु को पकड़वा दिया, ये उसका उपनाम लाया गया। उसके आगे जो हम देखते हैं यहूदा के बारे में मरकुस उसके 3 अध्याय में, और तब उसके बारे में जब चुना गया तब भी उसको टाइटल दिया गया, उसने यीशु को पकड़वाया, लेकिन उसके साथ साथ उसको लालची कहा गया, उसको चोर कहा गया, उसको स्वार्थी कहा गया, उसको उस व्यक्ति को, कौन व्यक्ति है जो यीशु के 12 शिष्यों में से एक है, जो यीशु के साथ रह रहा है, यीशु के आश्चर्य कर्मों को देख रहा है, यीशु की शिक्षा को प्राप्त कर रहा है, यीशु के साथ चल रहा है, यीशु सब कुछ को जानता है, यीशु हर एक व्यक्ति को जानता है, लेकिन फिर भी वो धीरज रखता है, और धीरज रखने के साथ वो जानता है कि इस व्यक्ति के द्वारा मेरी योजना पूरी होगी, परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में और मेरे लिए जो संसार के लिए वो पूरी होगी, वो यीशु जानते हैं। और इसलिए यद्यपि उसके बारे में कहा गया, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह को यहूदा के प्रति दुख था। आप जानते हैं यहूदा का अंत कैसे हुआ, उसने बाद में अपने आप को फांसी में लटका दिया। मेरे प्रियो, थोड़ी देर की सोचने की बात है, यहूदा यीशु के साथ रह रहा है, यीशु की शिक्षाओं को पा रहा है, यीशु के आश्चर्यों के कर्मों को पा रहा है, यीशु का जब लोग स्वागत कर रहे हैं तो उसका स्वागत हो रहा है, जब लोग खाकर तृप्त हो रहे हैं तो वो भी उसमें सहभागी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसका हृदय इतना कठोर है कि इसके हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने जीवन को परखना है, क्या ये मेरे और आपकी दशा तो नहीं है कि हम यीशु के समूह में शामिल हो जाते हैं, उसके शिष्य होने का दावा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में स्वार्थ है, चोरी है, छल है, धोखा है, और किसी ना किसी रीति से हम अपने कार्य के द्वारा आज भी यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। और इसीलिए पौलुस प्रेरित फिलिपी की कलीसिया में लिखते हुए कहता है कि आज भी कितने ऐसे हैं जो अपने कार्य के द्वारा यीशु को आज भी क्रूस पर चढ़ाते हैं। मेरे प्रियो, हम विश्वासी हो सकते हैं, हम बपतिस्मा ले सकते हैं, हम कलीसिया में सदस्य बन सकते हैं, हम दान दे सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे हृदय का गहरा परिवर्तन नहीं है, हमारे जीवन में प्रभु के सामने एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन फिर भी यहूदा को प्रभु अवसर देता रहा, यह अवसर देता रहा, अवसर देता रहा, और जब बाद में अंत हो गया और यहूदा ने अपने पाप से के लिए शोकित हुआ, पछताया, लेकिन पछताने के बाद जो उसको सही कदम उठाना था उसने नहीं उठाया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा भला होता इस व्यक्ति का जन्म ना होता। क्यों? प्रभु यीशु मसीह को दुख इस बात का नहीं था कि यहूदा ने उसको पकड़वा दिया, प्रभु यीशु मसीह को दुख इस बात का नहीं था कि वो जीवन भर उसके साथ रहते हुए उसको धोखा दिया, लेकिन सबसे बढ़कर उसको यह दुख था कि उसने अपनी आत्महत्या कर ली, कि उसने पश्चाताप के असर को छोड़ करके, त्याग करके अपने जीवन को अंततः स्वयं नरक में पहुंचा दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह किसी पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, परंतु वो हरेक को अंत तक पश्चाताप करने का अवसर प्रदान करता है, और यहूदा के साथ ऐसा ही हुआ। उसको मौका मिला लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया। सच्चा पश्चाताप हमें हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में परिवर्तन लाता है। सच्चा पश्चाताप हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारी इच्छाओं में, हमारे कार्यों में, हमारे स्वभाव में परिवर्तन लाता है। और यहूदा का सबसे बड़ा अपराध यह था, अवसर पाते हुए भी वो सच्चे पश्चाताप की ओर नहीं लौटा। मेरे प्रियो, पहली घटना जो हम यहूदा के जीवन से देखते हैं, तब उसके बाद आगे चल के हम देखते हैं पतरस के बारे में देखते हैं। जरूर मैंने कहा बहुत सारी घटनाएं, 18 घटना के बारे में बताया, लेकिन सब मैं नहीं जाऊंगा, चिंता ना करिएगा। लेकिन दो तीन बातों का आज कुछ मुख्यतः आपके सामने डालना चाहूंगा। तब उसके बाद हम एक और बात को देखना चाहते हैं पतरस के बारे में। पतरस प्रभु यीशु मसीह का उन तीन मुख्य शिष्यों में से एक था। प्रभु यीशु मसीह ने 12 शिष्य चुने थे, और 12 शिष्यों के बाद प्रभु यीशु मसीह के तीन एक इनर सर्कल शिष्य माने जाते थे, जिनके साथ यीशु अधिक से अधिक अपना समय व्यतीत करते थे। यही कारण था जब वो प्रार्थना के समय में आया, अपने शिष्यों को लेकर आया, कुछ लोगों को अलग छोड़ा, लेकिन इन तीन को और पास रखा, तब आगे प्रार्थना में गया, और जब वो वापस आया इन तीनों को सोते हुए पाया, यूहन्ना, याकूब, पतरस। यही कारण था जब वो रूपांतर पर्वत पर गया तो उसने अपने साथ याकूब, यूहन्ना और पतरस को साथ लेकर गया। ये उसके इनर सर्कल में थे। पतरस जोश से भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही यहां पर आते हैं हम देखते हैं जोश में आकर वो सोचता है मैं प्रभु के साथ खड़ा होकर तलवार चलाऊंगा, और तलवार चला के मैं उसको बचा लूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहेगा ओ शाबाश पतरस, तू मेरे ऊपर बहुत विश्वास करता है, तू मेरे अच्छे मित्र में से है, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। पतरस को हमेशा डांट पड़ती थी, पतरस को हमेशा डांट पड़ती थी। जब उसने अपने सेवा के समय में प्रभु ने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, उसने कहा पतरस था, उसने बहुत समझदारी से उत्तर दिया तू झूठे परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पतरस को कहा प्रभु ने यह बात तुझे मांस और लहू ने, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने तुझ पर प्रकट की है, मत्ती उसके 16 अध्याय में पढ़ते हैं। लेकिन थोड़ी बात देर बाद क्या हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह कहने गए अवश्य कि मैं मारा जाऊं, यरूशलेम में जाऊं, पकड़ा जाऊं, कष्ट, ओ प्रभु ऐसा मत कह, यीशु तेरे साथ, ऐसा ना हो, प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा, हे शैतान तू दूर हो जा, तू दूर हो जा, क्योंकि उसने उतावलेपन में अपने जोश में कि मैं बहुत प्रभु से प्रेम करता हूं, जील तो थी, अच्छा था, लेकिन उस उतावलेपन में उसने अपने जीवन को बार बार इस प्रकार से दिखाया वो डूब रहा है, गिर रहा है, ये हो रहा है। थोड़ी देर आगे चल करके यहां पर तलवार उठाता है, प्रभु उसको कहता है तू तलवार रख दे। आगे चल करके जब प्रभु यीशु मसीह पकड़े जाते हैं, आगे बढ़ूंगा फिर पीछे आऊंगा, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा जाता है क्या हुआ था, थोड़े समय पहले प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहा था लूका उसके 22 अध्याय के 31 पद में, जब बहुत सारी बातचीत हो रही थी प्रभु यीशु मसीह कह रहा था, तब शमौन, प्रभु यीशु मसीह ने शमौन से कहा हे शमौन, हे शमौन अर्थात पतरस उसका नाम है, पतरस शमौन देख शैतान ने तुम लोगों को गेहूं के समान भटकने के लिए आज्ञा मांग ली है। क्या कहना चाह रहा है प्रभु, मैं तो अब जाने वाला हूं, उस कार्य को पूरा करके मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम अब उस परिस्थिति का सामना करोगे कि तुम्हें फटका जाए। क्या मतलब है फटका जाए, कि गेहूं गेहूं रहे और भूसा और सारा कूड़ा नीचे अलग निकल जाए। ये कठिनाइयां, ये सतावनियां इसीलिए आती हैं ताकि मैं और आप भी गेहूं के समान फटके जा सके, और यहां पर प्रभु ने उससे कहा कि तुझे मां तुम्हें मांग लिया है, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है और तेरा विश्वास कर कि पतरस सबके लिए कहते हुए फिर पतरस की ओर मुंह करता है। वो कह रहा तुमको सब शिष्यों से बात कर रहा है, फिर पतरस की ओर मुंह कह रहा है पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है तेरा विश्वास ना चला जाए, अतः जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। दोनों बातें हैं, तू मुड़ जाएगा लेकिन तू फिर जाएगा। दोनों बातों को परमेश्वर पतरस के लिए क्या बता रहा है, और दोनों चीजें हुई हैं, दोनों चीजें हुई हैं। तब क्या हुआ, उसने उससे कहा, कौन पतरस कह रहा है, हे प्रभु मैं तेरे साथ जेल जाने को और मरने को भी तैयार हूं। प्रभु मैं तेरे साथ जेल जाने को और मरने को भी तैयार हूं। फिर उसने कहा, पतरस मैं तुझसे कहता हूं जब तक तू इस बात से मुझे जानता है आज 3 बार इनकार ना कर ले मूर्ख बांग ना देगा। क्या कह रहा है, मैं जानता हूं तू इस बात को जोश में कह रहा है, लेकिन पतरस समय आने वाला है कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तू कहता है मैं मरने के लिए तैयार हूं, तू कहता है मैं जान देने ही तैयार हूं, तू कहता है सब तो छोड़ दे, लेकिन मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। पहला एक सुसमाचार उसका यह भी वर्णन करता है उसके बारे में, लेकिन मैं तुझसे पतरस कह रहा हूं कि तू ऐसा करेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और वो सब कुछ को जानते हैं, पतरस को जानते हैं, अभी जानते हैं, कल उसके बारे में जानते हैं, भविष्य के जीवन के बारे में जानते हैं उसके। और तब हम थोड़ी देर आगे चल के देखते हैं, जब इसी अध्याय में आगे बढ़ते हैं 57 पद में क्या हुआ, उससे कहकर इससे इनकार क्या, हे नारी मैं उसे नहीं जानता, पहली बार उसका इनकार 57 पद में। दूसरी बार 58 पद में, कुछ देर पश्चात किसी और ने उसे देखा और कहा तू भी उनमें से एक है, परंतु पतरस ने कहा नहीं जी मैं नहीं हूं। दूसरी बार, फिर तीसरी बार 60 पद में, जब एक और आया उसने कहा कि गलीली है, 60 पद में, परंतु पतरस ने कहा हे भाई मैं नहीं जानता तू क्या कहता है। और तब ये बात लिखा हुआ है, तत्काल जब वो बातें कर ही रहा था मुर ने बांग दी, और तब पतरस फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु ने जो कहा वो कथन पूरा हुआ। अब ये प्रभु यीशु मसीह के पकड़े जाने की तैयारी है। प्रभु यीशु मसीह उन बातों कह रहा है कि क्या कुछ मेरे शिष्यों की स्थिति रहेगी और क्या कुछ मुझे सामना करना पड़ेगा। और अभी केवल हमने 2 जनों के बारे में देखा है, लेकिन आइए हम तब यीशु के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे। मैंने भी कहा कि इस 24 घंटे से कम के समय में 29 भविष्यवाणी जो हमने भजन संहिता 22 पढ़ा है उसमें 5 भविष्यवाणी है जो नए नियम में हम पूरी होते देखते हैं दाऊद के द्वारा। और दाऊद प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लगभग 1000 साल पहले था, यीशु के जन्म से 1000 साल पहले उसने भविष्यवाणी कर दी, वो पूरी हुई। तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये भविष्यवाणी पूरी, 18 घटनाएं घटी और 5 बार प्रभु यीशु मसीह को लोगों के शासकों के सामने खड़े होना पड़ा। अब हम देखना चाहते हैं उन शासकों के लिए जिनके सामने प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, ये क्रूस के पर चढ़ने की तैयारी है, क्या है। पहली बात 54 पद से, वे उसे बंदी बना कर ले गए और महायाजक के घर ले चले, परंतु पतरस दूर ही दूर उसके पीछे चला जा रहा था। तत्पश्चात जब वे आनन के मंदिर में पहुंचे, अब यहां पर पहले हम देखते हैं कि उसको महायाजक के घर ले गए। महायाजक जो उस समय स्थान का ये आध्यात्मिक गुरु है, आध्यात्मिक पद रखता है, आध्यात्मिक कहना चाहिए स्पिरिचुअल लीडर है, जो व्यवस्था के अनुसार सारी बातों का न्याय करने वाला है। उन्होंने कहा ठीक है, ये यहूदी पंथ से है और ये व्यवस्था को तोड़ रहा है, ये सबत के दिन में चंगाई कर रहा है, ये व्यवस्था को कुछ और तरह से लोगों को समझा रहा है, और इसलिए हमें इसको महायाजक के पास लेना है, जो महायाजक मंदिर का शासक होता था, सब कुछ उसके अधिकार में, आत्मिक वित्तीय रिधियां उसके अधिकार में होती थी, उनके पास ले जाएं ताकि ये उसका न्याय करे। और तब उसी समय में ये सब कुछ होने लगा। और जब उनके पास है तो क्या हो रहा है, 63 पद में हमने उसके पत्रस के इनकार के बारे में देख लिया। 63 पद में वे लोग जो यीशु को पकड़े हुए थे उससे ठट्टों में उड़ाकर पीट रहे थे, उन्होंने उसकी आंखों को ढांपा और ये कहकर उसे पूछने लगे, भविष्यवाणी कर, किसने तुझे मारा है? वे उसकी निंदा करके उसके विरुद्ध कई और बातें कह रहे थे। वो यीशु जिसने आज तक लोगों के साथ भलाई की है, जिसने आज तक लोगों के साथ की सेवा की है, जिसने आज तक लोगों पर तरस खाया, अपने तरस को दिखाया है, जिसने लोगों पर अद्भुत रीति से उनका बचाव किया है, जो व्यवस्था के ठेकेदार थे उनके सामने खड़े होकर उन लोगों का उसे सामना किया है, बचाव किया है, अपने प्रेम को दिखाया है, अपनी दया को दिखाया है, अपनी सेवा को दिखाया है, अपनी शांति को दिखाया है, सब कुछ जो संसार के किसी भी मनुष्य के जीवन में नहीं है, वो उसने सकारात्मक रीति से अपने उन लोगों सामने प्रकट किया है। आज वे लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं? वो उसको ठट्टों में उड़ा रहे हैं। ये क्यों हुआ? मेरे और आपके लिए हुआ। वो उसकी निंदा कर रहे हैं, उसके आंखों में पट्टी बांधकर उसको मार रहे हैं और पूछ रहे हैं, अब बता तुझे किसने मारा है? उसके लिए कोई असंभव कार्य नहीं था कि वो ना बता पाए, वो सब कुछ जानता था। वो जब सेवा में था, एक स्त्री ने उसके वस्त्र को छुआ, वो तब उसने बता दिया मुझे किसी ने छुआ है, वो स्त्री डर गई। आप उस कहानी को जानते हैं। जब वो सेवा में आरंभ हुआ, वो शिष्य पेड़ के नीचे था, उसने कहा मैं उस समय तुझे जानता था जब तू पेड़ के नीचे था। वो सब कुछ को जानने वाला परमेश्वर है, वो उस समय भी जानता था, लेकिन फिर भी वो मेरे और आपके लिए उस पीड़ा को सहते हुए शांत रहा। इसीलिए यशाया कहता है कि उसने अपना मुंह न खोला, जैसे बद के समय भेड़ शांत रहती है, उसने अपना मुंह न खोला। मेरे प्रियो, ये उसकी स्थिति थी। ना केवल इतना हुआ, अब क्या हुआ आगे चल करके? तब उसके बाद यहां से कुछ और दूसरों के पास ले गए। अब ये दूसरा स्थान था जहां प्रभु यीशु मसीह को पहुंचा दिया गया। वो बृहस्पतिवार की थर्सडे की नाइट में, लगभग मिडनाइट में उसको पकड़ा गया, और लगभग सुबह 3 बजे से लेकर 9 बजे तक लोग उसका ठट्टा उड़ाते रहे, उसको मारते रहे, उसको इधर से उधर घसीटते रहे, ले जाते रहे, लोग उसका न्याय करने के लिए तैयार रहे, सब कुछ होता रहा। ये सारी पीड़ा वो सहता रहा। अब वो दूसरे स्थान पे पहुंचता है। पहले वो महायाजक के पास है, दूसरा महासभा में है। मैंने कहा 5 बार वो लोगों के पास, इधर से उधर पास है। दूसरा महासभा। जब दिन हुआ तो लोगों ने, सुबह सुबह 6 बजे का टाइम हुआ लगभग, लोगों की महासभा बुलाई गई जिसमें मुख्य याजक और शास्त्री भी थे, और वे उसे महासभा में ये कहते हुए के ले गए, यदि तू मसीह है तो हमें बता। परंतु उसने उनसे कहा, यदि मैं कहूं तो फिर भी तुम विश्वास नहीं करोगे, और यदि मैं प्रश्न पूछूं तो तुम उत्तर नहीं दोगे। अगर उनको विश्वास करना होता तो उस समय विश्वास कर लेते जब यीशु मसीह ने अद्भुत आश्चर्यकर्म किए थे। लोग चकित हो रहे थे, अरे 5 रोटी 2 मछली से कैसे ये इतने लोगों को खिला सकता है?
जब वो लाजर को जिलाकर उठाया तो कह सकते थे कैसे कर सकता है, और कई बार लोगों ने कहा ये मसीह है, ये मसीह है। जब उसने सामरी स्त्री को जीवन प्रदान किया और उसको सुसमाचार दिया, वो प्रभु के पास आई, पूरा गांव का गांव उसके पीछे हो लिया, लोग कहने लगे हमें मसीह मिल गया, तब भी लोगों ने विश्वास नहीं किया ये मसीह है। एक नहीं कई सारे अवसर आए जब लोगों ने जाना, देखा, सुना। क्यों? क्योंकि यहूदियों के विचार में अगर कोई मसीह आने वाला था, अभी भी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, अगर मसीह को आना था तो उसको एक राजा बनकर आना था, उसको बड़े धूमधाम से आना था। मसीह क्या इस चरनी में ऐसे जन्म लेगा? मसीह क्या इस प्रकार से संसार में आएगा? नहीं, नहीं, नहीं। और इसलिए वो उसको स्वीकार नहीं कर सके। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि मैं कहूं तो तुम अभी भी विश्वास नहीं करोगे। जब तुमने उस समय विश्वास नहीं किया तो विश्वास नहीं करोगे। ये मनुष्य की दशा है। और आज भी मेरे प्रिय कितने लोग हैं, हम यीशु की चंगाई को तो चाहते हैं, यीशु की भलाई को तो चाहते हैं। हमारा देश बहुत सारे लोगों को, अगर आप कहानियों को पढ़िए और गवाहियों को पढ़िए, गांधी जी की गवाहियों को पढ़िए, पढ़कर देखिए, उन्होंने यीशु मसीह की शिक्षा को तो अपनाया लेकिन यीशु को ना अपनाया। आज भी विडंबना है, आज भी वही स्थिति है। आज भी लोग यीशु के अनुयायी पर तो दोष लगा सकते हैं, मुझ पर, आराप पर तो दोष लगाते हैं, लेकिन यीशु पर आज भी दोष नहीं लगा सकते। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। लेकिन प्रभु यहां पर कह रहे हैं, तब वो कह रहा आगे चल करके 69:69, परंतु अब से मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के सामर्थ्य की दाहिनी ओर बैठाया जाएगा। तब सब ने पूछा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने कहा, हां मैं हूं। उन्होंने कहा, अब हमें आगे साक्षी की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने स्वयं उसके मुंह से सुन लिया है, और उनके विधान में कोई भी अपने आप को परमेश्वर के समान या परमेश्वर का पुत्र नहीं बना सकता था। वो मसीह यीशु को अब्राहम के समान भी नहीं मानते थे, वो यीशु मसीह को मूसा के समान भी नहीं मानते थे, लेकिन यीशु मसीह ये यहां पर वो कह रहा है मैं हूं, ये पहली बार नहीं है। जब वो सेवा में था, यहूदी लोग उससे बात करते, अगर आप यूहन्ना उसके 8 अध्याय का अध्ययन करें, और लोग आगे पूछने लगे तो बात करने लगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा इससे पहले इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूं, और मैं हूं ये परमेश्वर के नाम का नाम है। उसने अपने आप निर्गमन की पुस्तक में मूसा से कहा, मूसा जब तू जा रहा है, मूसा ने कहा अगर मैं जा रहा हूं फिरौन के पास और उससे कहूंगा कि तुझको किससे भेजा है, तो उसने कहा तू कहना कि मैं हूं ने तुझे भेजा है। वो पुराने नियम का परमेश्वर, नए नियम का हमारा यीशु है। पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का हमारा यीशु है। मैं हूं, उससे कोई गलत बात तो नहीं की थी, लेकिन उनके दिमाग में था अरे इसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र, अब तो हमने जान लिया है, अब तो हमने जान, अब उनको दोष लगाने का मौका मिल गया। दूसरी स्थिति, तीसरी बात, अब किसके पास पहुंचाया गया? तब उन्होंने उसको पिलातुस के पास पहुंचा दिया। तीसरा कदम, 23 अध्याय के पहले पद में, तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई। अब सोचिए उसकी मानसिक स्थिति, सोचिए उसकी शारीरिक स्थिति। जरूर वो परमेश्वर था, लेकिन इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया था, वो पूर्ण मनुष्य था। मेरे और आपके समान वो थका, मेरे और आपके समान वो रोया, मेरे और आपके समान वो प्यासा हुआ, मेरे और आपके समान उसको नींद की आशा हुई, क्योंकि वो पूर्ण मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आ, इसलिए कि मनुष्य के पापों की छुड़ौती के लिए पशु पक्षी जानवर पूरा छुड़ौती का काम नहीं कर सकते थे, वो बलिदान पूरा कर सकते थे, इसलिए अवश्य था कि मनुष्य के छुटकारे के लिए कोई मनुष्य ही बलिदान हो। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया और मेरे और आपके लिए वो बलिदान हुआ। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह सेवा में आते हैं, यूहन्ना उसके पहले अध्याय उसके 49 में यूहन्ना उनका स्वागत करता है और कहता है देखो ये परमेश्वर का मेमना। जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। यूहन्ना उसका 1:29। देखो परमेश्वर का मेमना, वो पूर्ण मनुष्य बनकर परमेश्वर की ओर से मेमना बनकर आया था ताकि वो मेरे और आपके पाप को वो उठा ले जाए, और अब वो स्थिति में है कि वो मेमना मेरे और आपके लिए अपने प्राण को बलिदान करे, बलिदान करे। तब लिखा हुआ है दूसरे पद में, वे कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने इस मनुष्य को देशवासियों को बहकाने और कैसर को कर देने से मना करते हुए और ये कहते हुए पाया कि मैं स्वयं मसीह राजा हूं। क्या उसने कैसर को कर देने से मना करा था? नहीं करा था। झूठे आरोप लगाए गए, अभी और आगे पढ़ेंगे आपको मालूम चलेगा। अच्छा हो कि मत्ती में जाकर आप पढ़े, मरकुस में जाकर पढ़े इन आखिरी 2 अध्यायों को, और आप उनका वर्णन किस रीति से उसके जीवन के बारे में पूरा वर्णन करता है। वो कह रहा है कि उसने कैसर को कर देने के लिए मना कर था। जब लोग आके पूछ लगे या मत्ती उसके 22 अध्याय में, क्या कैसर को कर देना उचित है अनुचित है, उसने कहा सिक्का दिखाओ। लोग सिक्का लेकर आए, देखा जो प्रभु का प्रभु को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। जब कर देने की बात आई, उसने पतरस का, पतरस जा तुम बंसी लेकर जा और मछली डग्गी डालना, और जैसे मछली मिलेगी उसके मुंह को खोलना, उसमें सिक्का मिलेगा और उस सिक्के से तू कर चुका देना। उसने कभी भी व्यवस्था का विद्रोह या विरोध नहीं किया, लेकिन ये लोगों का दोष था। मेरे प्रियो, आज मेरे मुझ पर और आप पर क्या दोष लगाता है? ये धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये लोगों को लालच देते हैं, ये लोगों को बहकाते हैं, ये लोगों को देश विद्रोही बनाते हैं, लोगों के ओ क्योंकि हम यीशु के अनुयायी हैं। आज भी मुझे और आपको इसी चीज का सामना करना पड़ता है। यदि आपने विश्वास किया है, आप गांव में देहातों में रहते हैं, तो जो कुछ उन्होंने यीशु के साथ किया, यीशु तो हरा पेड़ था, उसने कहा जब उन्होंने हरे पेड़ के साथ किया है तो वो सूखे के साथ क्यों ना करेंगे। तो अगर वो मेरे और आपके साथ करते हैं तो हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। यहां पर और तब प्लातुस के बारे में लिखा हुआ आगे चलके, प्लातुस ने उससे पूछा क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उत्तर कहा ठीक तू स्वामी कह रहा है। प्लातुस ने मुख्य याजकों और भीड़ को कहा, बातचीत करने के बाद, पूरी बातचीत का वर्णन नहीं, संक्षिप्त बातचीत का वर्णन है, लेकिन पूरी बातचीत के बाद 3 बार प्लातुस कहता है मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया। पहली बार यहां पर कहता है मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया, परंतु वो ये कहकर दबाव डालते रहे। वो गलील से लेकर समस्त यूदिया में शिक्षा दे देकर लोगों को भड़काता है, यहां तक कि इस स्थान में भी। जब प्लातुस ने सुना तो और पूछा कि अरे ये मनुष्य गलीली है, तो प्लातुस ने सोचा बहुत अच्छा समय आया है, उसने उस समय उसको हेरोदेश के पास पहुंच दिया, क्योंकि हेरोदेश उस समय गलील क्षेत्र का शासक था, उसके पास भेज दिया। तब 8वें पद में जब हेरोदेस ने यीशु को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुआ। क्यों? 2 कारण थे। यहां पर यीशु अपने मरने से पहले एक अद्भुत काम कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्लातुस ने हेरोदेस के पास भेजा, अगर आप परमेश्वर के वचन में देखें लूका 13 अध्याय में तो हम पाएंगे कि हेरोदेस और प्लातुस में बहुत ही अधिक क्रोध था या मित्रता उनकी टूटी हुई थी, उनका आपस में कोई संबंध नहीं था। कारण क्या था? प्लातुस ने गलील के लगभग 1,000 लोगों को पानी के जल के विवाद के कारण मरवा डाला था। जल का विवाद आरंभ से समस्या का कारण बना है, और अंतिम दिनों में मैं आप ये बाइबल भविष्यवाणी करती है, अंतिम दिनों में जल का विवाद और अधिक बढ़ता चला जाएगा, ये बाइबल बताती है इस बात को। और तब उसके बाद इस विवाद के कारण ये हेरोदेस और ये सब अलग हो गए थे। दूसरा कारण, हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को क्या करा था? उसका गर्दन उतरवा दी थी। कारण क्या था? क्योंकि उसने इस बात कहा था तू अपने भाई की पत्नी को तू रखता है, और हेरोदेस ने यीशु के बारे में बहुत कुछ सुना था,
उसके आश्चर्य कर्मों के बारे में सुना था, उसकी शिक्षा के बारे में सुना था, और जब उसने यीशु को देखा तो लिखा है ये लंबे समय से उसे देखना चाहता था, वो उसके विषय में सुना करता था, अतः उसके द्वारा कुछ चिन्ह दिखाए जाने की आशा किया करता था। उसकी अपेक्षा कुछ और थी। उसने यीशु के बारे में सुना था, यीशु के कार्य के बारे में सुना था और यीशु के शिक्षाओं के बारे में सुना था। अब हेरोदेस ने सोचा कि अरे यीशु मेरे सामने, अब कुछ ये आश्चर्य कर्म मेरे सामने करेगा। उसकी अपेक्षा कुछ और थी। लेकिन क्या हुआ, उसने उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे पर यीशु ने उससे कुछ उत्तर न दिया। यीशु शांत रहा। यशाया 53 बहुत अच्छी रीति से उसका वर्णन करता है। मुख्य याजक और शास्त्री वहां खड़े होकर उस पर दोष लगा रहे थे, तब हेरोदेस ने अपने सैनिकों सहित उसे ठट्टों में उड़ाने और उसके साथ दुर्व्यवहार करने के पश्चात उसे भड़कीला वस्त्र पहनाया और पिलातुस के पास लौटा दिया। उसी दिन से हेरोदेस और पिलातुस परस्पर मित्र बन गए, इससे पहले उनमें शत्रुता थी। मृत्यु के लिए जा रहा है, शत्रुओं को मित्र बना रहा है। मित्र मृत्यु के लिए जा रहा है लेकिन शत्रुओं को मित्र बना रहा है, यद्यपि मित्रता उनके स्वार्थ के कारण थी। लेकिन फिर भी हम प्रभु यीशु मसीह के कार्य को देखते हैं और तब हम इस बात को देखते हैं, उसको ठट्टों में उड़ाया गया, उसको भड़कीले वस्त्र पहनाए गए, उसका निंदा और अपमान किया गया। अब उसके बाद हम फिर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को पांचवें स्थान पर, फिर पिलातुस के पास देखते हैं। पहली बार महायाजक का सामने था, दूसरी बार वो भीड़ के सामने है, शास्त्री और याजक के सामने था, महासभा के सामने था, तीसरी बार पिलातुस के सामने था, चौथी बार हेरोदेस के पास पहुंचा, फिर अब उसके पास, फिर पांचवी बार उसको पिलातुस के पास पहुंचा दिया गया। अब ये जो समय था एक बहुत लंबा समय था, बहुत समय था। तब पिलातुस से बातचीत करते हुए फिर कहता है 14 पद के आखिरी बाद में, पर मैंने इस पर उन बातों का कोई अपराध नहीं पाया जिसका तुम दोष लगाते हो। हेरोदेस ने क्योंकि उसे इसके हमारे पास लौटा दिया और देखो इसने मृत्यु दंड का योग्य कोई कार्य नहीं किया, अतः मैं इसे ताड़ना देकर छोड़ दूंगा। पर्व के दिन, ध्यान दीजिएगा इस पर थोड़ी देर ठहरना चाहूंगा मैं, पर्व के दिन पिलातुस को उसके लिए एक कैदी को छोड़ना पड़ता था। पिलातुस रोमी शासक है और रोमी शासक लोग जब यहूदियों का पर्व आता था, जैसे भी आज भी हमारे भारत देश में या दूसरे देशों में जब कोई नेशनल फेस्टिवल आता है, खासतौर से इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस जब आता है, तो बहुत सारे कैदी जो गवर्नर के हाथ में अधिकार होता है प्रांत से, और देश के अधिकार में राष्ट्रपति के हाथ में अधिकार होता है कि बहुत सारे कैदियों को या तो उनकी कैद कम कर दी जाती है या उनको रिहा कर दिया जाता है। और उस समय में एक प्रथा यह थी, जो रोमी शासक हुआ करते, वो रोमी शासक उस समय यहूदियों के कहने पर कोई एक कैदी होता था जिसको वो रिहाई कराया करते थे। और तब यहां पर लिखा हुआ है वो उसको छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन क्या हुआ, लोग क्या कहने लगे, उसको छोड़ना पड़ता था 18 पद में, परंतु वे एक साथ चिल्ला उठे। क्या चिल्ला उठे, इस मनुष्य का काम तमाम कर। किस मनुष्य का, इस यीशु का काम तमाम कर। वो यीशु को मारना चाहते हैं, यीशु को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वो यीशु के ना तो अधिकार को समझ पा रहे हैं, ना यीशु की योजना को समझ पा रहे हैं, ना यीशु के प्रेम को समझ पा रहे हैं, ना परमेश्वर की योजना समझ पा रहे हैं। केवल एक बात उनके दिमाग में है, अगर ये हमारा राजा नहीं बना है और इसके राज के अधिकार में हमने स्मृति पर रहते हुए इस पिलातुस के शासन से, रोमी शासन से छुटकारा नहीं पाया, तो बेकार है इसका जीना, अवश्य मारा जाए। लेकिन तब उन्होंने क्या कहा, तब उन्होंने एक मांग करी, और मांग क्या थी, उन्हें कहा, चिल्ला कर बोले, तमाम कर और हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे। हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे। बरब्बा कौन था? बरब्बा के लिए जितने भी हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, हम उस बरब्बा के बारे में पाते हैं। यह बरब्बा हत्यारा है,
बरब्बा बलवा करने वाला, इसके यहीं पर लिखा हुआ है, वो नगर में बलवा कराने और हत्या के अपराध में बंदी बनाया गया था। प्रभु यीशु मसीह ने कोई बलवा नहीं कराया था, प्रभु यीशु मसीह ने कोई देश द्रोह का काम नहीं करा था, प्रभु यीशु मसीह ने किसी की हत्या नहीं की थी, लेकिन एक व्यक्ति है, एक अब यहां पर बरब्बा खड़ा हुआ है, यहां पर यीशु खड़ा हुआ है। पिलातुस कह रहा है तुम मुझे बताओ किसको मैं छोड़ दूं, यीशु को छोड़ दूं या बरब्बा को छोड़ दूं। बरब्बा ने तो हत्या की है, बरब्बा ने तो बलवा किया है, बरब्बा ने तो लोगों को लूटा है। अगर आप सुसमाचार में पढ़ेंगे हर जगह बरब्बा के लिए कुछ ना कुछ उसके जीवन के चरित्र के साथ साथ जुड़कर लिखा हुआ है। वो देशद्रोही है, वो अपराधी है, वो लुटेरा है, उसने सब कुछ किया है, दूसरे सुसमाचार के अन्य पदों में हम पाते हैं ये। लेकिन एक और यीशु खड़ा हुआ है, एक और यीशु जो धर्मी है, जो पवित्र है, जो प्रेमी है, जिसने कभी पाप नहीं किया, उसमें कोई भी पाप नहीं था, वो निष्पाप था। परमेश्वर का वचन इसके लिए स्पष्ट बोलता है बाइबल में कई जगहों में किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के लिए, कि प्रभु यीशु मसीह निष्पाप निष्पाप निष्पाप। दूसरा ग्रंथ उसका 5:21, वो पाप से अंजान था। पहला पत्रस 2:22, उसने कभी कोई पाप नहीं किया। पहला योना उसका 3:5, उसमें कोई पाप नहीं था। एक और यीशु है, एक और यीशु है जो निष्पाप है, पवित्र है, प्रेमी है, दयालु है। अपने उस पकड़वाए जाने के समय में भी अपने प्रेम को प्रदर्शित कर रहा है, अपने दया को प्रदर्शित कर रहा है, और उस व्यक्ति का जिसका कान उड़ा दिया गया उसको ठीक कर रहा है, और अपने शिष्य को डांट लगा रहा है तू अपनी तलवार को नीचे रख। लेकिन दूसरी ओर वो विद्रोही बलवाई हत्यारा, मैं किसको छोड़ दूं, मैं किसको छोड़ दूं। मेरे प्रियो, आज भी इसी चीज का हमें सामना करना पड़ता है। और तब 24 में आगे चल के लिखा है, इसी अध्याय के 19:20 में, पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु वे कहते हुए चिल्लाते रहे उसे क्रूस पर चढ़ा, उसे क्रूस पर चढ़ा। मेरे प्रियो, ये क्रूस कहां से उन्होंने जान लिया था, ये क्रूस उन्होंने कहां से जान लिया था, क्रूस उन्होंने यीशु के मुंह से जाना था। प्रभु यीशु मसीह ने जब शिष्य को चुना तो सबसे पहले उसने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, अगर वो अपना क्रूस ना उठाए तो मेरे योग्य नहीं। तब वो आगे 16 में जब कलीसिया के बारे में बात करता है, फिर उसने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, वो क्रूस जो त्याग का निशान है, वो क्रूस जो सेवा का निशान है, जो क्रूस कष्ट सहने का निशान है, वो क्रूस। लेकिन ये लोग उस क्रूस के अर्थ को नहीं समझते। इनके दिमाग पे तो ये है, जो पुरानी व्यवस्था में था, ये व्यवस्था में था कि जो व्यक्ति देशद्रोही हो या हत्या के अपराध में पड़ जाए उसको काट पर लटका कर मार डाला जाए। उस समय की क्रूस आज की इस लिपिपुती चिकनी क्रूस के समान नहीं होती थी, वो लट्ठे होते थे, गोल लट्ठे होते थे, और एक लट्ठे का वजन 90 होता था, उसको उठाकर चलना पड़ता था। ये तो बाद में 200 AD में ये इसका शेप और इसका रूप बदला है, उसकी भी कथा है कैसे ये आया रूप में, कैसे इसको मसीहत में क्रूस को एक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन ये स्थिति है और ये लोग चिल्ला रहे हैं उसको क्रूस पर चढ़ा, उसको क्रूस पर चढ़ा। कहता है इसने कोई भी, तीसरी बार वो कह रहा है 22 में, उसने तीसरी बार उनसे कहा क्यों इस मनुष्य ने क्या बुराई की है, मैं तो उसमें कोई बुराई नहीं पाता। इसी के बीच में दूसरा सुसमाचार वर्णन करता है, उसकी पत्नी ने, पिलातुस की पत्नी ने रात में स्वप्न देखा और कहा कि ये स्वप्न देखा, और तब वो आई, मैंने रात में स्वप्न देखा है, और पिलातुस से कहती है तू इस धर्मी के मामले में अपना हाथ मत डालना। परमेश्वर ने प्लातुस की पत्नी को यह दर्शा दिया कि ये धर्मी है। प्लातुस भी देख रहा धर्मी है, प्लातुस की पत्नी भी देख रही है धर्मी है, लेकिन भीड़ है जो भीड़ चिल्ला चिल्ला के कह रही है इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। और अंत वो प्लातुस अपने विवेक से समझौता करता है, अंत प्लातुस अपने निर्णय से समझौता करता है, अंत प्लातुस अपने सोच विचार से जो उसकी दृष्टि में है उससे समझौता करता है और अपने आप को बचाते हुए अपने हाथ को धो लेता है। हाथ धोने से वो अपने अपराध से बच नहीं पाया। और कई बार हम भी कई बार अपने हाथ को धोना चाहते हैं। तब उसके बाद आगे चल के लिखा हुआ है, आगे चल के परंतु वे ऊंची आवाज से चिल्ला चिल्लाकर पीछे पड़ गए कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए और उनके चिल्लाने का प्रभाव बढ़ने लगा। पिलातुस ने निर्णय लिया कि उनकी मांग पूरी की जाए। तब उसने उस मनुष्य को, किसको, जो बलवा और अपराध के कारण बंदी बनाया गया था, इससे पहले हमने उसके बारे में हत्या शब्द देखी थी, हत्या के अपराध में, बलवा के अपराध में, जो बलवा और इस अपराध में पकड़ा गया था, अपराध में कारण बंदी बनाया था, उनकी मांग के अनुसार मुक्त कर दिया, परंतु यीशु को उनकी इच्छा पर छोड़ दिया। क्या मतलब है? लो, मैंने तुम्हें इसको छोड़ दिया, अब तुम ले जाओ, इसके साथ जो तुम्हें करना है तुम करो। उसने यीशु को अपने अधिकार को त्याग दिया, उसने अपने निर्णय को त्याग दिया। प्लातुस कह रहा, लो तुम इसको ले जाओ, अब तुम जो चाहते हो उसको करो। लेकिन किसको उसने आजाद कर दिया? बरअब्बा को। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस क्रूस की यात्रा में इस बात को प्रदर्शित किया, वो इस संसार में इसलिए आया ताकि पापी लोग उसके जीवन के द्वारा, उसके द्वारा छुटकारा पा सके, बचाए जा सके, उनके अपराधों का दंड उनसे मुक्त हो सके। वो बरअब्बा जो कैदी था, जो अपराधी था, वो जेल से रिहा कर दिया गया, उस दंड से रिहा कर दिया गया। वो इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे जाते जाते मुझ और आप जैसे बरअब्बा को आजाद करा है। क्या मैं और आप बरअब्बा के समान नहीं थे? या क्या मैं और आप बरअब्बा के समान पाप में नहीं थे? बरअब्बा हत्यारा था और प्रभु का वचन कहता है, क्या मैं और आप हत्यारे थे? प्रभु का वचन मत्ती में कहता है, जो कोई अपने भाई से घृणा करता है वो हत्यारा है। क्या वो हत्या का पाप, अध्याय का अपराध वो मेरे और आपके ऊपर नहीं था? अवश्य मेरे और आपके ऊपर था। मेरे प्रियो, वो देशद्रोही का अपराध जो परमेश्वर के वचन की व्यवस्था और परमेश्वर को तिरस्कारता है, वो उसके राज के नियम को तिरस्कारता हुआ, उसका देश दोषद्रोही होता है। हमने तो आदम की वाटिका से पाप में गिरकर परमेश्वर से विद्रोह किया, उस सृष्टिकर्ता से विद्रोह किया। आरंभ से हमारा स्वभाव, हमारी इच्छाएं, हमारा सब कुछ पाप में लग गया, विद्रोह के स्वभाव में हो गया। क्या हम किसी रीति से बरअप्पा से कम थे? वो विद्रोही का स्वभाव हमारा स्वभाव था, विद्रोह का कार्य हमारा कार्य था, वो मेरा और आपका कार्य था। अपराध, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहे, वो पाप जो परमेश्वर की महिमा को लूटे जाने का पाप था। क्या हम लुटेरे नहीं थे? परमेश्वर की सत्य निष्ठा को लूटने का पाप था, क्या हमारे अंदर वो नहीं था? वो क्रूस की यात्रा में है इसीलिए ताकि उन पापों से मुझे और आपको वो आजाद कर दे। वो अपराध तो मेरा और आपका था अपराध। ये बरअब्बा जो प्रभु यीशु बने थे उस समय उसको आजाद किया, वो मेरे और आपकी तस्वीर है, मेरे और आपकी परछाई है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके उस अनंत प्रेम के लिए, उसकी उस अनंत महिमा के लिए, जिसमें होकर उसने मुझ और आप जैसे तुच्छ निकृष्ट पापियों के साथ प्रेम किया कि जब हम पापी थे ठीक समय पर मसीह हमारे मरा। ताकि हम उसके कीमती बलिदान के द्वारा उस पाप से छुटकारा पा सकें, जो यात्रा मुझे और आपको सहनी थी, जो निंदा मुझे और आपको सहनी थी, जो कोड़े के मार मुझे और आपको सहने थे, जो थूक मुझे और आपको सहना था, जो वेदना मुझे और आपको सहनी थी, वो उसने अपने ऊपर सह ली, ताकि मैं और आप बरब्बा जैसे अपराधी बचाए जाएं, उस बदग्रह से छुड़ाए जा सके। इसलिए उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया। उसके क्रूस की कथा को गाना सरल है, उसका वर्णन अपने शब्दों में करना सरल है, लेकिन जब हमारे शरीर में एक कांटा चुभता है, हमें कितनी पीड़ा होती है। जब हमें सड़क पे कोई थप्पड़ मार देता है तो हमें कितना क्रोध आता है। जब हमारे लिए कोई अपमान सही शब्दों का इस्तेमाल करता है तो हमारा अहम कितना अधिक टूटता है। हम तो बरब्बा के स्वभाव में थे, बरब्बा के जीवन में थे। उसने क्या किया था? उसके मुंह से तो कई छल की बात नहीं, कोई छूट और छल की बात निकली थी नहीं निकली थी। उसने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो मेरे और आपके लिए क्रूस पर आगे चल गया। और तब आगे चल के लिखा हुआ है 26 पद में, जब वे उसे ले गए तो उन्होंने गांव की ओर से आते हुए शमौन नामक एक क्रूर को पकड़ लिया और क्रूस उसके कंधे पर रखा कि वो यीशु के पीछे पीछे चले। उसके पीछे लोग एक बड़ी भीड़ चली आ रही थी, उसमें स्त्रियां भी थीं और वो रो रो कर विलाप कर रही थी, परंतु यीशु उनकी ओर पलट कर कहा, यरूशलम की बेटियों मेरे लिए मत रो, परंतु अपने अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो ऐसे दिन आ रहे हैं जबकि लोग कहेंगे धन्य वे बांझ और वे गर्भ जिन्होंने जन्म नहीं दिया और वे स्तन जिन्होंने कभी दूध नहीं पिलाया। तब वे पहाड़ों से कहने लगेंगे हम पर गिर पड़ो और पहाड़ियों से हमें ढांप लो, क्योंकि यदि वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस समय इस बात को कह दिया, कह रहा मेरे लिए मत रो, लेकिन अपने लिए अपने बच्चों के लिए लो। कहां है वो माता पिता जो आंसू बहा बहाकर अपने बच्चों के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं? कहां है वो माता पिता जो घुटनों के होकर रो रो के उपवास के साथ ये प्रार्थना करते हैं, मन सकते हैं, हे प्रभु हमारे बच्चों को बचा ले, नाश होने से बचा ले, हे अपने बच्चों के लिए रो। कहां है वो माता पिता आज? हम उनकी आस्था को पूरा करना चाहते हैं, हम उनको लाड दिखाना चाहते हैं, लेकिन कब हमारे आंसू निकलते हैं उनके उद्धार के लिए? आपने अपनी समस्याओं के लिए उपवास किया होगा, आपने अपनी आस्थाओं के लिए उपवास किया होगा, आपने अपनी दूसरी बातों के लिए उपवास किया होगा, लेकिन कितनी बार बच्चों के उद्धार के लिए आंखों से उपवास करते हुए आंसू बहाए होंगे? मेरे और आप पर बहुत जिम्मेदारी है। प्रभु जो समय वो बात कह रहे हैं वो आगे समय तक के लिए है। मेरे प्रियो, आगे चल के तब एक और बात है, तब लिखा है जिसके साथ समाप्त करूंगा मैं, और तब अन्य दो और अपराधी उसके साथ मृत्यु पर दंड के लिए चलाए गए। जब वह स्थान पर खोपड़ी कहलाता है पहुंचे, वहां उन्होंने उसे और उसके साथ दो अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को दाहिनी ओर और दूसरे को बाएं ओर। लेकिन हम जानते हैं उस क्रूस पर भी उसने एक को जीवन प्रदान कर दिया। क्रूस पर है, ताड़ना सह रहा है, सब कुछ कह रहा है, लेकिन जिसने उस पर विश्वास किया, जिसने उसको स्वीकार किया, उसको वहां पर भी उसने क्षमा प्रदान करके अपने राज में प्रवेश करा दिया। मेरे प्रियो, यह क्रूस का बलिदान इसलिए नहीं कि हम इस कथा और कहानी को स्मरण करें, लेकिन इसलिए है कि उस क्रूस पर जिस यीशु ने मेरे और आपके लिए दुख सहा, उस पर विश्वास करें, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो किसी पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, परंतु हरेक को अंत तक पछताव का सजा देता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्रभु का धन्यवाद, हम आने वाले में गुड फ्राइडे, पाम संडे, ईस्टर सब मनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कितना अधिक आपने उस वेदना पर विचार किया है? कितना अधिक आपने उस पीड़ा पर विचार किया है? कितना अधिक आपने उस यीशु को देखा है? ओ मेरे प्रियो, उस पे लिखा हुआ है लोग उसको पहचानते नहीं थे, लोग उसको देखते थे और मुंह फेर लेते थे। ये बगल में हमारे एक बहुत पहले पिछले साल तक एक गुलाब का बाग था, एक गुलाब का, उसकी तो ऐसी दशा हो गई थी जैसे गुलाब के एक फूल की डंडी को आपने उठा लिया, ओ फूल बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, गुलाब बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी पत्ती गिर गई और सब कुछ हो गया, और आपने यहां तक कि उसकी जो खाल है उसको उतार करके एक ऐसे रख दिया, और आप कह रहे ये गुलाब का डंडी है। अब वो पहचान में नहीं आएगा, अब वो पहचान में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी सुंदरता, उसकी खुशबू, उसका सब कुछ उतार दिया गया है। ऐसे अधिक प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्रूस पर सहा, उसकी कोई सुंदरता नहीं थी। कितना अधिक हमने विचार किया इस बात पर, कितना अधिक, क्या हम गंभीरता से बात को ले सकते हैं? आज आप क्या कह सकते हैं? यदि आपका विवेक आपको दोषी ठहराता है कि आपके अंदर वो बरबक का स्वभाव और चरित्र और वो पाप है, आज अवसर है। देखो अभी उद्धार का समय है, इसलिए पश्चाताप करो और लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। अभी वो समय है, वो कहिए यीशु मैं तेरे बलिदान के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देती हूं, आज मैं समझ गया और मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं, आपके हाथों में सौंपती हूं, उस क्रूस के कार्य को मेरे व्यक्तिगत जीवन में कीजिए जो आपने एक दिन संसार में किया है। मैं उसको लेना चाहता हूं, मैं उसको लेना चाहती हूं। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए जीवन है। क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए जीवन है।